के ऊपर लड़ाई की थी उसमें उन्होंने वादा किया था कि ये जो बहुत ही टॉर्चरस इनका मिलिट्री जेल था अबू गारिब, जिसके के अंदर बहुत सारे लोगों को बस ये उठाकर ले आए थे और उनके साथ बहुत ज्यादा उनको टॉर्चर और जुल्म उनके ऊपर किया गया था, और कहा गया था उसके बाद जो है कि ये बहुत ही इल ट्रीटमेंट था। जब ह्यूमन राइट्स वॉच की ये खबर आई तो वो कहते हैं जी कि उस वक्त यूएस गवर्नमेंट ने ये वादा किया था 2009 में कि ये जो लार्जेस्ट डिटेंशन सेंटर है कंट्री का, इराक का, जिसमें के 100,000 इराकीज को पकड़ पकड़ के बस डाल दिया गया था विदाउट एनी इंफॉर्मेशन कि क्या ये इनका टेररिज्म में या किसी और चीज में हाथ है, तो उसके लिए इन्होंने कहा था कि हम इनको कॉम्पेंसेशन देंगे। मिलिट्री जो थी यूएस की, उसने तो सॉरी नहीं बोला था, लेकिन उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने सॉरी कहा था इस तरह से कि उन्होंने कहा जी कि ये टॉर्चर जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इट्स अ डिसग्रेस जो कि ये फ्यू यूएस ट्रुप्स ने किया है। तो वो कहते हैं जी कि फरवरी 2004 की एक रिपोर्ट जो आई थी कि जिसमें यूएस लेड मिलिट्री कोलिशन जो थी बाय रेड क्रॉस ने कहा था उसमें कि इन्होंने जो है 90% ऑफ वो लोग यहां पे बंद किए थे अबू गारिब के अंदर जिनका के कोई मिस्टेक भी नहीं था, कोई गलती नहीं थी, बस पकड़ पकड़ के इन्होंने डाल दिए थे और उनके ऊपर बेतहाशा टॉर्चर उनके ऊपर किया गया था। तो उसके ऊपर जब ये रिपोर्ट्स आई तो उस वक्त के यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जो थे डोनाल्ड रम्सफेल्ड, उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल प्रॉमिस करते हैं कि हम इन सब लोगों को जिनके के साथ अब्यूज और जिनको हार्म दिया गया है उनको हम कॉम्पनसेशन देंगे, लेकिन कुछ भी मटेरियलाइज नहीं हुआ था उस वक्त। उसके बाद जी उन्होंने कहा एक और बात आई अमेरिका में सामने कि अंडर फॉरेन क्लेम्स एक्ट जो है ये इसमें हम जो अपने जो मिलिट्री के अफसर हैं उनको जो है एक तो उनके खिलाफ प्रोसेसिंग नहीं करेंगे ये सारे, और ये जो रिक्वेस्ट की गई थी कॉम्बैट एक्सपेल्शन क्लॉज जो है कॉम्पेंसेशन के लिए जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, अंडर दिस क्लॉज उन्होंने कहा जी कि हम शायद इनकी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे। इराकी जो थे उन्होंने क्लेम किया था कि जो यूएस कोर्ट्स जो हैं उन्होंने जो भी कोई लॉज बनाए हैं उसको अब चेंज किया जाए और हमें जस्टिस दी जाए, लेकिन यूएस मिलिटरी जो थी वो 1946 के ही जो है लॉज को फॉलो कर रही थी, जिसमें कि कहा जाता है कि यूएस फोर्सेस से अगर कोई कॉम्बैट के बीच में कोई गलत किस्म की एक्टिविटी होती है तो उसके लिए उनको पुल अप नहीं किया जा सकता। तो आज ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह कहा है कि ये सब लोग जो अबू गारिब के अंदर थे आपने अभी तक इनके लिए ना तो कॉम्पेंसेशन दिया है, ना टॉर्चर जो जिन मिलिट्री वालों ने किया था उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है, ना कोई रिड्रेसल आपने इन गरीब लोगों के लिए किया है, और खामखा इनकी जिंदगी आपने खराब की वहां पे उनको किया, क्योंकि जो टॉर्चर की जो डिटेल्स है वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपके रोंटे खड़े हो जाएंगे जिस तरह का इन लोगों पे किया जिनका कि कुछ लेना देना भी नहीं था। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लैवरोव जो है जी उन्होंने कहा है जी कि वेस्ट जो है वो एक एम्पायर ऑफ लाइज चला रहा है, और वो कह रहा है कि जी ये कर रहे हैं न्यो कॉलोनियल माइंडसेट जो है ये इधर करना चाहते हैं इंट्रोड्यूस ग्लोबल साउथ में, ताकि जो यूक्रेन की वॉर है उसके लिए इनको बैकिंग मिल सके। ये बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क के अंदर, और उन्होंने कहा कि यूक्रेन और अपने वेस्टर्न एलाइज जो हैं वो इसके लिए यूक्रेन के लिए कीव के लिए बहुत सारी सपोर्ट जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट रशिया, और ये ड्यूप कर रहा है लोगों को, ग्लोबल मेजोरिटी जो है उसको ड्यूप कर रहा है, यानी कि झूठ बोल के भुला फुसला के उनको कह रहा है कि हमारा साथ दो, और ये दिस इज कॉल्ड सबॉर्डिनेटेड कलेक्टिव जो है वो इसको का नाम दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये चीज कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ावा देगी और आर्टिफिशियल डिवाइड लोगों के बीच में पैदा करेगी, और जो अचीवमेंट्स हैं जो अच्छाई की तरफ हम दुनिया को लेके जाना चाहते हैं वो एम जो है हासिल नहीं किया जा सकेगा। उनकी ये जो स्पीच थी इट इज पार्ट ऑफ द राउंड द वर्ल्ड ऑफ रशियन व्यूज जो है दैट टूर जो है उसका हिस्सा है ये, और उसमें उन्होंने कहा जी कि जो मॉस्को का प्लान कोई उन्होंने नहीं बताया, एक साल हो गया कॉन्फ्लिक्ट को कोई उसके बारे में उन्होंने बात नहीं की, और उन्होंने कहा जी कि ये जो 10-point प्रपोजल जो जेलेंस्की साहब ने दिया है इसको भी हम नकारते हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा था एक और भी यूनाइटेड नेशंस ने भी प्रपोजल दी थी कि एटलीस्ट ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो है उसको आगे लेके जाया जाए, उन्होंने कहा कि हम ये किसी भी प्लान को मानने को तैयार नहीं है क्योंकि इसमें जो है वेस्ट जो हमारे साथ जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे कि वो रिमूव करेंगे रशियन बैंक्स के ऊपर से सैंक्शंस वो अभी तक इन्होंने नहीं किए हैं, और हमको जो ग्लोबल स्विफ्ट सिस्टम है उसका हिस्सा नहीं बनाया है, इसलिए हम इन तमाम प्रपोजल्स को चाहे जेलेंस्की का 10-point है चाहे यूनाइटेड नेशंस के प्रपोजल्स हैं हम उन सबको जो है वो खारिज करते हैं। और जेलेंस्की साहब जो है वो अपनी हरकतों की वजह से वैसे काफी जो नेबर्स हैं अपने उनको तंग कर रहे हैं, तो नेबर्स जो है वो काफी अब इनके खिलाफ होते जा रहे हैं, यूएनजीए के ऊपर पर उन्होंने कहा था जी कि हम तो बड़ी लैंड जो है वो प्रिजर्व करना चाहते हैं ताकि ग्रेन एक्सपोर्ट चलते रहे। पोलैंड ने कहा कि हम बिल्कुल तुम्हें इजाजत नहीं देंगे ये ग्रेन के इंपोर्ट्स के लिए, क्योंकि तुम जो है सारा काम इलाके के खिलाफ कर रहे हो। इसी तरह आपको पता है हालांकि नेटो का हिस्सा है लेकिन हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बन, उन्होंने भी बुडापेस्ट में कहा है कि हम बिल्कुल जो है यूक्रेन को सपोर्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये एथनिक हंगेरियंस को कोई भी सपोर्ट जो है वो नहीं देते हैं अपने मुल्क में। तो वैसे यूक्रेन के साथ आजकल दुनिया की बड़ी हमदर्दी है, यूक्रेन की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है, जो इन्होंने मुसलमानों के साथ जुल्म किए हैं और जो कुछ इन्होंने और भी किए हैं वो भी जरा दुनिया को देखने की जरूरत है। तस्नीम न्यूज एजेंसी जो है, आपको पता ही है कि ईरान की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, उसके मुताबिक 30 के करीब बॉम्ब्स जो हैं वो पूरे ईरान के अंदर साइमल्टेनियसली फोड़ने के इरादे थे और बेतहाशा ये एक लंबा टेररिस्ट का नेटवर्क था जो आइसिस चला रहा था, जो कि ये अब ईरान को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन ईरानियन अथॉरिटीज, उनकी पुलिस, उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस, उन सब की वजह से उन्होंने तकरीबन 28 टेररिस्टों को पकड़ा है जिनका के ताल्लुक है तकफीरी ग्रुप के साथ जो कि ज्यादातर ऑपरेट करता है सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कर्डिस जो इलाके हैं यहां पे इराक के, वहां पे उनके वो इन्होंने आइसिस रिलेटेड ये 28 पकड़े हैं टेररिस्ट। और ये जो हैं बिल्कुल उसी तरह से ये करना चाहते थे। आपको पता ही है कि वो जो ट्विन बॉम्बिंग्स हुई थी 2017 में जब इन्होंने ईरानियन पार्लियामेंट को टारगेट किया था और टूम ऑफ ईरान्स फाउंडर आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी को इन्होंने टारगेट किया था, और इन्होंने फिर जो है एक और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी अटैक की जो शिया श्राइन पे हुआ था लास्ट अक्टूबर में, जिसमें कि 15 लोग शिराज में मर गए थे। तो ये इस तरह की ये हरकतें जो हैं ये करते रहते हैं, और ये जो हैं असल में कहते हैं कि बाकी सारी दुनिया काफर है और ये जो मुसलमान इन काफरों की बात मान रहे हैं वो भी काफर हैं, इसलिए जो है इनको सबको सीधे रास्ते पे लाने की, मतलब बिना वजह के धर्म के ठेकेदार जो हैं वो बने हुए हैं। तो ये जो है इनके पास से बहुत सारी क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और डेटोनेटर्स मिले हैं, 17 यूएस मेड पिस्टल्स, एम्युनिशन, कम्युनिकेशन डिवाइसेज, मिलिट्री ग्रेड क्लोदिंग, सुइसाइड वेस्ट, फॉरेन करेंसी जो मिली है। ईरान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि जी ये जो सारे के सारे जो चीजें थी ये इस तरफ इशारा करती हैं कि ये चीजें ज्यादातर इसराइल से अलेजली लाई गई थी। तो जाहिर है कि हमें यही लगता है कि वो ही इनको शायद जो है ये सप्लाई कर रहे थे अलेजली जो है, क्योंकि इनका जो तरीकाकार है काम करने का वो भी वैसा ही है जैसे कि इसराइलीज काम करते हैं। टर्किश प्रेसिडेंट जो है जी तैयब अर्दोगान साहब, वो अब अजरबैजान पहुंचे हुए थे, वहां पे उनकी मुलाकातें हुई हैं अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं इलहम एलीयेव के साथ। उन्होंने इनको वेलकम किया बाकू में, और उसकी वजह यह है कि अजरबैजान की मिलिट्री ने विन किया है नगारनो काराबाख का जो एरिया है, तो यहां से बहुत सारे जो आर्मीनियंस रह रहे थे, क्योंकि अब जाहिर है ये दिस इज गोइंग टू बी अंडर द मुस्लिम रूल, तो शायद आर्मीनियंस को लगा होगा कि हम अब नहीं रह सकते, तो वो यहां से भाग कर गए। हालांकि हमेशा से ये जो था नक्शे के ऊपर नगोर्नो काराबाख अजरबैजान का हिस्सा था, लेकिन इसके ऊपर जो है आर्मीनिया, क्योंकि वहां पे आर्मीनियंस रहते थे तो उन्होंने इस इलाके के ऊपर लड़ाई झगड़ा शुरू किया था, लेकिन बहरहाल जी एक सीज फायर इनके बीच में आया है और उस सीज फायर की वजह से अब जो है ये सारी वहां पे इस वॉर को ठंडा किया गया है। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अजरबैजान के निकोल पाशिनयान, उन्होंने भी ये कहा है कि मैं सोचता हूं कि जैसे 120,000 जो हैं वो निकल के यहां से चले जाएंगे लोग आर्मीनिया में, और उनको लग रहा है कि जैसे हम इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं विच इज नॉट राइट, और मेजॉरिटी ऑफ काराबाख आर्मीनियंस जो हैं वो वैसे अजरबैजान को जो है वो मानते भी नहीं और वो इनके साथ रहना भी नहीं चाहते हैं। तो बहरहाल जी ये जो इनकी आज विक्ट्री हुई है उस सिलसिले में तैयब अर्दोगान साहब जो है उनको मुबारकबाद देने गए हुए थे। आपको पता ही है कि ये सारा जो इलाका है ये अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे यहां पे सारे जो है सल्जुक टर्क्स रहते थे, और इनफैक्ट इसी इलाके से जो हैं ये सल्जुक टर्क्स जिनको के मुगल एम्पायर जिन्होंने फिर आके हिंदुस्तान में डाली थी वो इसी इलाके से आए थे। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय एग्जीक्यूटिव होम रियल्टी, और ये कहते हैं जी कि अगर आपको बायर एंड सेलर लीड्स चाहिए और आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़ें। इसके लिए आपको कॉल करना है मतीन साहब को, मतीन साहब का नंबर है 6478856655। इसके अलावा अगर आपको ऑन्टेरियो के लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल जो बफे है वो खाने का आपने यानी एंजॉय का मजा लेना है तो आप विलेज टेस्ट में जाएं। इनकी नई लोकेशन अब आ गई है ओकविल के अंदर, 2294 लेक शोर रोड वेस्ट के ऊपर है, और इनका नंबर है 9052262 6224 अगर आप इसके ऊपर ऑर्डर डालना चाहते हैं जाने से पहले, ताकि आपका खाना तैयार रहे और आपको गरम गरम मिले. एंड जनाब ऑफकोर्स नान एंड कबोब 5042 सेटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3 के ऊपर अब ये इनका नया लोकेशन आया है और बड़े जबरदस्त आपको पता ही है कि खाने ये देते हैं. तो अगर आपको यहां पर भी खाना खाना है और खासतौर पर ग्रिल्ड आइटम्स इनके खाने हैं तो आप इनको प्लीज कॉल करें एट 416-285-8191 पे. हाँ जी, ये जो इमरान रियाज साहब आपने देखा ही होगा, जो एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट थे, 4 महीने घर से बाहर रहने के बाद वापस अब आ गए हैं. अगर आपको पता हो कि 770 जो है इसने एक, हम लोगों ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया था इनके जो लॉयर थे इमरान रियाज साहब के, मियां अली अशफाक साहब जो हैं उनके साथ कुछ दिन, जस्ट अबाउट 4 डेज बैक, जिसमें कि उन्होंने कहा था, मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि क्या कुछ महीने लग सकते हैं उनके आने में, और उन्होंने बहुत ही क्लियरली मुझे कहा था नो, इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू डेज नाउ. और पहले भी हम इनको ला सकते थे लेकिन कुछ चीजें खराब हो गई थी. अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं देखा तो आप प्लीज जरूर देखें. सो वी ब्रोक दिस न्यूज ओवर हियर ऑन 770 और हमारा जो ई आवाज टीवी है उस पर. बहरहाल जी, इन्होंने जो है सियालकोट के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो है हसन इकबाल और रियाज के जो रियाज खान के जो इमरान रियाज के जो लॉयर हैं मियां अली अशफाक साहब, उन्होंने जी ये अपने जो एक्स जो है उसके ऊपर ये कहा था कि जी हमने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि ये वापस घर आ गए हैं. इनको लास्ट कैंट पुलिस स्टेशन में अरेस्ट के बाद लेकर गए थे और फिर बाद में इनको सियालकोट प्रिजन में, अगर आपने वो इंटरव्यू देखा तो वो सारा आपको मोडस ऑपरेंडी बताएंगे कि किस तरह उसको कहां कहां लेकर गए इसको इमरान रियाज खान को. तो बहरहाल जी, अब लाहौर हाईकोर्ट जो था उसने पहले 15 मई को पुलिस को कहा था और उसके बाद September 20 को उन्होंने IGP जो थे पंजाब के डॉक्टर उस्मान अनवर उनको कहा था कि जो चीफ जस्टिस थे मोहम्मद अमीर भट्टी के, आई एम रनिंग आउट ऑफ पेशेंस, उस लड़के को आप फौरन ढूंढें और उसको सामने लेकर आएं, जिसके ऊपर IGP ने वादा किया था कि वो उनको लेकर आएंगे. बहरहाल एनी वेज ही हैज कम बैक नाउ. एंड जर्नलिस्ट वजाहत खान जो है वो कहते हैं मैंने रियाज की फैमिली से बात की है, वो बहुत ज्यादा वीक है लेकिन फिर भी बेस्ट ऑफ हेल्थ में तो नहीं है लेकिन एटलीस्ट बैक अपनी फैमिली के साथ है. तो ये जो उनका इंटरव्यू था हमारे साथ मियां अली अशफाक साहब का, जिसमें कि उन्होंने वादा किया था कि ही विल ब्रिंग हिम बैक, तो ही हैज एक्चुअली फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस. ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जी, उन्होंने जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनके कमेंट्स का बहुत ज्यादा एक्सेप्शन लिया है. उन्होंने कहा भाई आपका इंटरिम सेटअप है, आपका सिर्फ ये काम है कि आप एंश्योर करें कि इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, आपका काम ये करवाना नहीं है, ये काम ECP यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, आपका काम फैसिलिटेट करना है. आप कैसे एक आदमी के बारे में यानी इमरान खान के बारे में और जो बाकी के जेल्ड PTI के वर्कर्स हैं उनके बारे में आपने कह दिया कि इनके बगैर भी इलेक्शंस हो सकते हैं, ये बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है. हजारों ही जो PTI के मेंबर हैं जिसके के बारे में काकड़ साहब ने कहा था कि वो तो अनलॉफुल एक्टिविटीज में नहीं है तो वो ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप जो है ये प्राइम मिनिस्टर साहब उनको ये पता होना चाहिए कि आपको यूनिलैटरली और फेयरली इलेक्शंस कैसे करवाने हैं, आपको किसी के साथ एसोसिएट होने की जरूरत नहीं है या किसी जो पार्टी है उसके साथ आपको उसके खिलाफ बात करने की जरूरत नहीं है. इस वक्त जो PTI की लीडरशिप है उसको आपने कंप्लीटली डिसमेंटल किया हुआ है, मैस अरेस्ट चल रहे हैं, री अरेस्ट चल रहे हैं, फोर्स्ड डिसोसिएशन करवाई जा रही हैं पार्टी से, डिसप्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो PTI के लीडर्स और वर्कर्स के खिलाफ बनाए जा रहे हैं. तो ये आपका काम नहीं है कि आप किसी की साइड लें, आपका काम इंटरिम सेटअप में है कि आप जो है वो पेव करें पाथ के एक फ्री और फेयर इलेक्शंस की तरफ पाकिस्तान जाए. और जो ये तरीकाकार PTI के प्रेसिडेंट परवेज इलाही साहब के साथ भी किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और बाकी के जो उनके लीडर्स और वर्कर्स हैं उनके साथ भी ठीक नहीं है. इंटरिम प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब जो हैं जी वो लंदन में थे, वो घूमने के लिए मेरे ख्याल में यात्रा पे निकले हुए हैं. वो मेरे ख्याल में मोदी जी से बड़े इंप्रेस हो गए हैं, उनको लग रहा है कि मैं भी शायद मोदी बन गया हूं तो उनको लग रहा है कि मुझे भी दुनिया सारी फिरनी चाहिए है ना, क्योंकि मेरे से तो दुनिया बड़ी इंप्रेस्ड है. पहले ये पेरिस के न्यूयॉर्क जाने से पहले वहां फिरते रहे, उसके बाद जी ये न्यूयॉर्क में फिरते रहे कोई एक दो स्पीचें करने के बाद, और अब ये जी लंदन आ गए हैं. अच्छा जी, लंदन में जिस वक्त ये पहुंचे तो उधर वहां पे इन्होंने बड़ी कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातें की जाएं, लेकिन जाहिर है कि हम सोच सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने और उनकी पार्टी ने कहा होगा कि वो शायद इनके साथ मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहां पे एक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ककड़ साहब से जर्नलिस्टों ने पूछा कि जी आप नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या सोचते हैं कि उनके साथ कैसा सलूक होगा अगर वो पाकिस्तान आएंगे, तो उन्होंने कहा जी कि अंडर पाकिस्तानी लॉ उनको ट्रीट किया जाएगा। यानी कि जाहिर है कि अंडर पाकिस्तानी लॉ तो ये है कि ही वॉज कंसिडर्ड एब्सकॉन्डर, तो उनको जैसे ही वो आएंगे उनको जेल में डाला जाएगा, तो जाहिर है कि उनको पसंद नहीं ये बात आई होगी। इससे पहले भी न्यूयॉर्क के अंदर इन्होंने टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान साहब से मिलने की बड़ी कोशिश की और दूसरे जो कुछ लीडर्स थे न्यूयॉर्क में उनसे भी मिलने की कोशिश की थी। सब ने हमने सुना है सोर्सेज के अनुसार कि जी उन्होंने मना कर दिया इनसे मिलने के लिए, उन्होंने कहा जी कि वो इनके साथ मिलना नहीं चाहते हैं। बहरहाल लंदन में उन्होंने सोचा कि शायद नवाज शरीफ साहब से मिले, यहां पे भी उनकी मुलाकातें जो है नहीं हो सकी, तो यहां पे बात करते हुए उन्होंने बड़ी शो मारी। हां हां ठीक है, कोई यूएस के बहुत सीनियर जो डेलीगेट्स थे उनके साथ जी यहां पे मेरी मुलाकातें हुई हैं, और जो अमेरिका के बिजनेसमैन हैं उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट शो किया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने का और इकोनॉमिक रिवाइवल का, और वो जो हमने बनाया है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल उसके अंडर पाकिस्तान में वो शायद कर सकते हैं। फिर इंडिया के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि ये जो इन्होंने कांड किया है कैनेडा के अंदर अलेजली, ये तो वन ऑफ अ काइंड है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और किसी दूसरे कंट्री में एक कंट्री का जाके और कैनेडियन सॉयल के ऊपर ऐसा काम करना, तो वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनको रियलाइज करना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज। तो जनाब ये बातें की। आईएसपीआर की आज एक प्रेस रिलीज आई है जी, और उसके मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं जनरल मुनीर साहब वो आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो हैं वो मिले और उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उनका एक डिफेंडिंग मदरलैंड में उनका बड़ा एक रोल है, और ये प्रेसिडेंट बिशप्स जो हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान और बिशप ऑफ रायविंड और 13 मेंबर डेलीगेशन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का था वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले थे जनरल हेडक्वार्टर्स में। और आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले ये जो सारे चर्चेज और ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर जला दिए गए थे उसी सिलसिले की जो वायलेंस हुई थी उस पर बात कर रहे थे। जनरल मुरीर ने उस वक्त भी बहुत डिनाउंस किया था अटैक्स को, और अब भी उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ये इस तरह का एक्सट्रीम बिहेवियर और इनटॉलरेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जो कोई भी ये झूठ बोलेगा और मिस इन्फॉर्मेशन किसी कम्युनिटी के बारे में फैलाएगा तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक फादर और सन का ड्यो है जी, यानी कि ये दो एक बाप बेटा जो है वो कराची पहुंचे हैं हिंदुस्तान से, और बड़ी लंबी इन्होंने जो है एक वो रूट काटा है। मोहम्मद हुसैन 70 इयर्स उसकी एज है और इसहाक आमिर 31 इयर्स उसकी एज है, दिल्ली के रहने वाले हैं, और ये कहते हैं जी कि हम पहले ट्रेवल करके दिल्ली से दुबई गए, दुबई से अफगानिस्तान का वीजा लिया, काबुल में हमने फिर फ्लाइट पकड़ के कंधार पहुंचे, वहां से फिर हम पहुंचे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर में इन स्पिन बोल्डक टैक्सी में, और टैक्सी वाले को हमने 60,000 रुपीज दिए और उसको हमने कहा कि हमें चमन के बॉर्डर पे लेके जाओ, और फिर हम कराची पहुंचे और कराची में आकर इन्होंने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने इनको जो है ईडी सेंटर जो सोहराब गोठ में है उधर शिफ्ट किया है। इनसे जब पूछा गया कि आप हिंदुस्तान से क्यों आए, क्योंकि हिंदुस्तान तो बड़ी वो शाइनिंग इंडिया है उसकी पिक्चर मोदी जी पेश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी यहां शाइनिंग इंडिया तो है लेकिन मुसलमानों को जो है दीवार से लगाया जा रहा है, और उनके ये वर्ड्स थे दोनों बाप बेटे के कि हिंदू टेररिस्ट जो हैं अब हमको इंडिया में हिंदुस्तान में रहने नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं और अब हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जो है जी उसने एक ऐतिहासिक एक बड़ा हिस्टोरिक विमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है उसको पास किया है, जिसमें कि उन्होंने अब कहा है मोदी जी ने कि 1/3 ऑफ सीट्स जो हैं लोअर हाउस के अंदर वो उसके अंदर खवातीन होंगी। आपको पता ही है कि हिंदुस्तान की जो आबादी है 1.4 बिलियन की है और जो विमेन है हाफ ऑफ 950 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स बनाती हैं और उनका भी हिस्सा कुछ ज्यादा नहीं है। 214 लॉ मेकर्स जो थे अपर हाउस के उन्होंने इस बिल का फेवर किया था, जो कि मोदी जी एक स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन में लेकर आए थे, और उन्होंने कहा था कि औरतों को और ज्यादा स्ट्रेंथन और एम्पावर करने की जरूरत है, तो इसलिए यह बिल पास किया गया। इससे पहले भी जो है 1996 में भी यह बिल लाया गया था लेकिन इसको पास नहीं किया गया था क्योंकि जो मेल लॉ मेकर्स उन्होंने इसको डिसअप्रूव किया था। अभी भी कुछ लोगों ने इतराज जरूर किया है, उन्होंने कहा कि इसकी इंप्लीमेंटेशन में बहुत अरसा लगेगा लेकिन बहुत सारी औरतें बड़ा हेल कर रही हैं, और इसमें जो है इतनी बड़ी तादाद औरतों की मुल्क में होने के बावजूद 15% सिर्फ लॉ मेकर्स जो हैं पार्लियामेंट में वो औरतें हैं, और स्टेट असेंबलीज में तो इनका और भी ज्यादा कम रेशो है, सिर्फ 10% हैं। लेकिन ये जो सारा कानून लेकर आए हैं जो अब नेक्स्ट ईयर के 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर ये लागू नहीं रहेंगे। अब जबकि ये बिल आया तो उसके साथ ही दूसरी खबर क्या आई हिंदुस्तान के जो अखबारों में देखी गई, एक दलित औरत जो है उसको अलेजली असॉल्ट किया गया, स्ट्रिप किया गया, बिल्कुल उसको उसके कपड़े सारे पाड़ के फेंक दिए गए और उसको जबरदस्ती जो है यूरिन पिलाया गया। उसकी वजह यह है कि वो 1500 इंडियन रुपीज का इंटरेस्ट नहीं दे सकी थी, जो कि उसने 9000 इंडियन रुपीज पे लिया था पटना में, जो कि बिहार की डिस्ट्रिक्ट है। और इसको फिर उसके बाद छह जो मर्द थे उन्होंने मारा पीटा और उसके सर को फाड़ दिया। और डीएसपी जो है इलाके का फतूहा यादव, उसने कहा जी औरत किसी तरह बचा के अपनी जान आई और उसने हमें सारी कंप्लेन की, तो हम जो हैं ये सारे छह लोगों को अब ढूंढ रहे हैं, ये जो एक्यूज हैं जो कि एब्सकॉन्डिंग कर रहे हैं, और उसके औरत के सर के ऊपर बहुत चोटें आई थी तो उसको अब हॉस्पिटल में डाला गया है और उसको जो अब है इलाज है। इसीलिए ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, उन्होंने कहा जी कि बेजी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे भी हैं और फिर अब ये नया बिल भी लाया है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ ये सारा कुछ चल रहा है। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन जो है जी इंडिया की, उसने 100th बर्थ एनिवर्सरी देव आनंद साहब की मनाने का किया है वादा किया है, क्योंकि देव आनंद साहब की कल सितंबर 26 को बर्थडे है। उस सिलसिले में 2 डे ये जो है सेलिब्रेशंस चलेंगी, उसका नाम इन्होंने दिया है देव आनंद एट 100। ये इवेंट जो है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया पीवीआर इनबॉक्स कर रहा है, जो कि 30 सिटीज में इनकी जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में थी, हम दोनों, तेरा घर, तेरे घर के सामने, सीआईडी और गाइड, वो फिल्में ये 55 जो हॉल्स हैं डिफरेंट इंडिया के उसमें ये लगाएंगे। टाइगर 3 जिसमें के हैं हमारे सल्लू भाई और कैटरीना कैफ, और इसके अंदर इस दफा जो है इमरान हाशमी भी नजर आएंगे, ये दिवाली को यानी कि अक्टूबर को ये अब जो है रिलीज हो सकती थी हो सकती है। इससे पहले कहा गया था कि ये अप्रैल में रिलीज की जाएगी, लेकिन अब ये की जाएगी वेंसडे के दिन। जो सलमान साहब हैं वो अपना एक वीडियो जिसका के नाम है टाइगर का मैसेज, वो अपना एक ट्रेलर के तौर पर, एक फीलर के तौर पर छोड़ेंगे। और आज सारा दिन अगर आप ट्विटर को फॉलो कर रहे थे तो ट्विटर के ऊपर द मोस्ट ट्रेंडिंग जो इस वक्त मैसेज था, टाइगर का मैसेज सितंबर 27 सलमान कैटरीना, ये ट्रेंड कर रहे थे। और ये 27 सितंबर को इसलिए ये वीडियो लेकर आएंगे यशराज फिल्म्स वाले, क्योंकि ये यशराज फाउंडेशन डे मना रहे हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ यश चोपड़ा, जो कि बहुत बड़े फिल्म मेकर थे और इसके जो यशराज फिल्म्स के फाउंडर थे उनके बेटे आदित्य चोपड़ा जो है फिल्म ये वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने। विकी कौशल से आज किसी ने पूछा एक इंटरव्यू के बीच में कि क्या आप अपनी खूबसूरत बेगम कैटरीना कैफ के साथ कभी किसी फिल्म में काम करते नजर आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ये सब चीजें जो हैं ऑर्गेनिक होनी चाहिए, फोर्स नहीं होनी चाहिए। हां मुझे पता है कि फैंस का बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि हम दोनों को साथ में काम करना चाहिए, लेकिन अगर फिल्म में उसकी सेंस नहीं बन रही और हमको बिला वजह टूंसा जा रहा है तो फिर इट विल नॉट बी द राइट थिंग टू डू। राइट स्क्रिप्ट, राइट सेटिंग होनी चाहिए तो फिर ही हम दोनों काम कर सकते हैं। आपको पता है कि इस वक्त जो है ये मोस्ट पॉपुलर कपल है बॉलीवुड का। मुझे बड़ी हैरत हुई है देख के, विकी कौशल और कैटरीना कैफ, नॉट रणवीर कपूर एंड आलिया भट्ट, ये दोनों ज्यादा पॉपुलर हैं जी, बड़ी बात है। एंड जनाब पीसीबी को जो थे बड़े कंसर्न्स थे, जो कि उन्होंने शिकायत भी की थी आईसीसी से कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको जो है बीसीसीआई वीजे नहीं दे रहा था, और बल्कि बीसीसीआई का उसमें लेना देना नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट उनको नहीं दे रही थी। एज अ रिजल्ट इनका जो मैच था एक जो दुबई में होने वाला था वो अब नहीं हो सकेगा। भरल जी अब इनको जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उसको दे दिया गया है, एक जो है वीजे दे दिए गए हैं, और अब अपना ये वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वेंसडे को हैदराबाद में खेलेंगे, और अब अपने जो वार्म अप मैचेस हैं जो कि 29 से शुरू हो रहे हैं उनके अंदर भी उस पे ऑनवर्ड्स ये पार्टिसिपेट कर सकेंगे। 10 नेशन वर्ल्ड कप जो है वो अक्टूबर 5 से अहमदाबाद में स्टार्ट हो रहा है और वार्म अप मैचेस जो हैं वो फ्राइडे से शुरू हो रहे हैं। और जनाब पाकिस्तान ने 5th कंसेक्यूटिव विक्ट्री ली जो ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप है उसके अंदर, और कनाडा को इन्होंने हराया, और कनाडा को इन्होंने टारगेट दिया था 313 का। पहले ये बैटिंग कर रहे थे एट कराचीज नेशनल स्टेडियम, पाकिस्तानी बॉलर्स ने इनको रिस्ट्रिक्ट किया कनाडा को 234/7 इन 45 ओवर्स और 78 रन से ये जीते। इससे पहले भी पाकिस्तान जो है ये इनकी 5th कंसेक्यूटिव विक्ट्री थी, इससे पहले इन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया था 6 विकेट से, ऑस्ट्रेलिया को 7, नेपाल को 248 रन से और यूएसए को 1 विकेट से। बड़ा थ्रिलिंग मैच था। तो अब पाकिस्तान की ये जो आज की जीत थी कनाडा के ऊपर ये 5th कंसेक्यूटिव विक्ट्री थी। एंजनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट पाकिस्तान हॉकी टीम, जिसने के सिंगापुर को 11-0 से ओपनिंग मैच में हराया है इन द एशियन गेम्स 2023, जो कि आपको पता ही है कि हैंगजाओ चाइना के अंदर हो रहे हैं। मोहम्मद अब्बास जो था उसने सेवंथ मिनट में ही फर्स्ट क्वार्टर के पहला गोल किया। सेकंड क्वार्टर में पाकिस्तान ने 5 गोल किए, थर्ड क्वार्टर में 4, फोर्थ क्वार्टर में 1। ये जिन लोगों ने गोल किए उनके नाम थे अम्माद, अरशद लियाकत, अरबाज अहमद, इन्होंने 2-2 गोल किए, शाहजेब खान, अब्दुल वहीद, जियारत हयात, अरफाज और अब्दुल रहमान ने 2-2 गोल्स किए। और कल ट्यूसडे को पाकिस्तान का मुकाबला जो है बांग्लादेश के अगेंस्ट है एशियन गेम्स के अंदर।
ये थी हमारी न्यूज आज की।
यस जी, ये हमारी खबरें थी आज की।
ये थी खबरें आज की और बाकी की बातें इंशाल्लाह ताला कल होंगी जी। थैंक यू सो मच। अब हम लिए चलेंगे आपको कहां पर,
स्पेशल
इंटरव्यू, स्पेशल इंटरव्यू, वेरी स्पेशल इंटरव्यू। देखना सुनना नहीं भूलिए, अब कहीं मत जाइए, बैठे रहिए वहां पर। जनाब नवाबजादा गजनफर अली गुल की बातचीत आरफा मुजफ्फर जी से, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं ये। क्या बात की इन्होंने ये तो जानने के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड कुछ ही देर बाद रिस्पॉन्स के पैगाम, उसके फौरी बाद आपकी बातचीत करवाएंगे नवाबजादा गजनफर अली गुल साहब से आरफा जी के साथ। तो चलिए
ओके माजिद भाई, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह।
यस, रिस्पॉन्सेस का पैगाम, वी विल बी राइट बैक।
डायरेक्ट पेमेंट ऑफ अप टू $650 पर चाइल्ड फॉर डेंटल केयर, नाउ दैट्स समथिंग टू स्माइल अबाउट। टू लर्न मोर विजिट canada.ca/dental। अ मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा।
स्टेट दी दुनिया विच थोड़ी कामयाबी एग्जीक्यूटिव होम्स रियल्टी जिथे तुसी 1.5 लाख तो 2 लाख साल दा कमा सकदे हो। इस तो अलावा फ्री बायर एंड सेलर लीड्स, वीआईपी एक्सेस टू प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, 1-on-1 सेल्स एंड मार्केटिंग मेंटरशिप, टीच एंड ट्रेन प्रोग्राम, स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न ऑफिस विद प्राइवेट रूम, इन हाउस मॉर्गेज एंड लॉयर्स टीम, इन हाउस प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। फिर देर का दी आओ ते ज्वाइन करो एग्जीक्यूटिव होम्स रियल्टी, या कॉल करो 905-890-1300 या विजिट करो ehrb.ca।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਨਵੀਂ SUV ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ 2023 ਦੀ ਫੋਰਡ ਐਸਕੇਪ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਔਰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, 13 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1.99% ਦਾ APR ਪਰਚੇਸ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਲੈਕਟ 2023 ਐਸਕੇਪ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਟੋਰੋਂਟੋ area de Ford dealer nu achhi।
Brampton Fire and Emergency Services Ontario Fire Marshal ke taawun se September 28 ko Save by the Beef mutarif karwa raha hai। Ontario ke pehle Test Your Alarm Day ke mauke par hum Brampton ke tamam rehaishon ko aapke alarm ki jaanch ke liye is ahem takreeb mein shamil hone ki daawat dete hain। Ye itna hi aasan hai jitna test button ko dabana। Yaad rakhein, aapke alarm bajne par aapke paas mehfooz tareeke se farar hone ke liye sirf 60 सेकेंड या इससे भी कम वक्त हो सकता है। फायर सेफ्टी हर एक की जिम्मेदारी है।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773। ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
ब्रैम्पटन ऑन स्टेज 12 से 18 अक्टूबर तक द रोज ब्रैम्पटन पर अहद रजानीर को हैमलेट के किरदार में देखकर खुश और वेलकम करते हैं। हैमलेट जो आजकल के दौर के लिए गजबनाक तेज रफ्तार इंतकाम और दागदार मोहब्बत की कहानी है। क्या आप हमारे डेनमार्क के शहजादे के साथ बाइज्जत खुशहाली पागलपन के दरमियान लाइन पर चलने की हिम्मत करते हैं? ये तब्दीली सिर्फ सच्चा सानिया ही ला सकता है। देखना मत भूलिएगा हैमलेट 12 से 18 अक्टूबर तक द रोज ब्रैम्पटन में। सेल टिकट्स खरीदने के लिए विजिट करें brampton-onstage.ca।
770 AM दी नशरियात सुनन ते हालात हाजरा तो बा खबर रहन दे वास्ते न्यूज इंफॉर्मेशन एनालिसिस इलेक्ट्रिक गड्डियां दे विच ई आवाज ऑफिशियल ऐप या साडी वेबसाइट eawaz.com लोकल नंबर
647-872-4900। You are watching E-Awaz TV, Voice of Community.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، کتنے آپ تمام خیریت سے ہوں گے؟ پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید۔ ہمارے آج کے مہمان نوابزادہ غضنفر علی گل صاحب، 30 پلس ایئرس کا ایکسپیرینس ہے۔ 1985 میں آپ نے پالیٹکس کو جوائن کیا، اچھی تعلیم حاصل کی پاکستان سے بھی اور پاکستان کے باہر بھی، بطور وکیل آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بڑی اسٹرانگ فیملی ہے اور گجرات سے آپ کا تعلق ہے، اور مگر میں ان کی فیملی ہسٹری کو دیکھ رہی تھی، فیملی میں کچھ لوگ جو ہیں، مجھے لگتا ہے نا کہ پاکستان کی صورتحال یہی ہے کہ کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ مسلم لیگ میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھیں۔ مگر سر نوابزادہ غضنفر علی گل صاحب نے ایک زندگی گزاری پیپلز پارٹی کے ساتھ اور بڑی اعلیٰ پوزیشنز کے اوپر رہے۔ آپ یوسف رضا گیلانی کے مشیر بھی رہے ہیں، آپ نے ممبر پال ایم پی اے ایم این اے، اور آپ ایک فیڈرل منسٹر کی پوزیشن کے اوپر بھی آپ نے کام کیا۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں نوابزادہ غضنفر علی گل صاحب کو۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟
السلام، شکریہ، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔
سر آپ کا تعلق گجرات سے ہے اور گجرات پہچانا جاتا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، اور میرا خیال ہے وڈیری فیملیز ہیں، یعنی میں اگر جس فیملی کا بھی گجرات کی کو اٹھا کے ذکر کرتی ہوں، خاص طور پر جو پولیٹکس میں ہے، دے ویری اسٹرانگ، یعنی بادشاہوں والا انداز ہے ان کا۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے۔
بادشاہ والا نہیں ہے
جی،
عوامی سٹائل میں رہا ہے، جیسے کہ میں نوابزادہ فیملی سے ہوں لیکن میں اپنی فیملی سے مختلف ہوں۔ میرا مزاج جو ہے وہ زیادہ عوامی ہے، میرے اندر وہ تفاخر اور وہ جو رونت ہوتی ہے ذمہ داروں میں، بڑے لوگوں میں۔
سر آپ نے 1985 میں پولیٹکس کو جوائن کیا، اٹ واز اے ڈیفیکلٹ ٹائم، اور ظاہر ہے بھٹو صاحب کی اسیسیشن نہیں ہے، آف کورس ہی واز، ان کو جو بھی اس وقت کا صحیح یا غلط فیصلہ آیا تھا اس کی پاداش بھگتنا پڑی تھی، ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، اور تب آپ نے پولیٹکس میں حصہ لیا اور آپ پیپلز پارٹی میں آئے تھے۔ کچھ اپنا تھوڑا سا یہ سفر بتائیں گے؟
تھوڑی سی آپ کی خصوصی ہے، ضیاء الحق کے دور میں نوابزادہ مظہر علی ایم ایل اے تھے اور نوابزادہ مظفر علی۔ میری جو پارلیمانی سیاست ہے 1988 میں شروع ہوئی، 1988، ضیاء الحق صاحب کے جانے کے بعد، اور 88 میں جو پہلا الیکشن ہوا ہے اس میں نوابزادہ مظہر علی ایم ایل اے کے لیے امیدوار تھے اور میں ایم پی اے کے لیے، نوابزادہ صاحب تھوڑے سے ووٹوں سے رہ گئے، اور मैं एमपी हो गया 15 वोटों के साथ। तो 88 से पीपल्स पार्टी के साथ मेरा सियासी सफर हुआ है पार्लियामेंट्री, और 88 के बाद हमारी असेंबली जो 5 साल के लिए मुंतखब हुई थी उसको 20 महीने में मोहतरमा की हुकूमत को खत्म किया और सूबाई असेंबलियां भी खत्म हुई। हम पंजाब में अपोजिशन में थे। फिर जो 1990 में इलेक्शन हुए उनकी जो दास्तान है वो आपको पता है कि पीपल पार्टी को व्हाइट वॉश कर दिया। और 1993 में फिर जो इलेक्शन हुए उसमें चौधरी शुजात को मैंने शिकस्त दे के मेंबर कौमी असेंबली होते हुआ और वहां से मैंने वफाकी सतह पे अपनी सियासत शुरू की। मोहतरमा के मैं बहुत एतमाद के साथियों में था। कौमी असेंबली में मैं 50 चीफ व्हिप भी था और फिर वो 93 की असेंबली भी 5 साल की बजाय 3 साल में खत्म कर। तो खोया कि हमने 2 इलेक्शनों में भी 5 साल पूरे नहीं किए। यही हाल मोहतरमा बेनज़ीर का है कि तमाम अजियतों और मुसीबतों के बावजूद भुट्टो साहब के अदालती कत्ल के बावजूद कैदोबंद की सबूतों के बावजूद मोहतरमा 2 ट्रेल्स में भी 5 साल मुकम्मल नहीं कर सकी और आखिर में उनको भी सियासी मंजर से हटा दिया गया। तो बाद में सब नून लीग और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत थी वो जब नून लीग हट गई तो आसफ साहब ने काफ लीग को साथ में लाया हमारे मुखालफों को, तो उसे मेरी फैमिली जो है वो पीपल्स पार्टी को छोड़ गई। मैं अगरचे पीपल्स पार्टी के साथ रहा लेकिन नवाब ज्यादा मदर अली तो हमारे सरबरा दूसरी फैमिली मुस्लिम लीग नवाज में चले गए और 2013 में नवाबजादा मदन अली दोबारा एमएलए हुए और नवाबजादा हैदर मेहंदी एमपीए हुए। 18 के इलेक्शन में मैं एमपी के लिए खड़ा था एमएलए के लिए और नवाबजादा हैदर मेहंदी एमपीए के लिए खड़े थे। हम जीत रहे थे और फिर वो सिस्टम डाउन किया गया और उसके साथ ही हमारा जॉब कैंसिल कर दिया। तो ये है मुख्तसर था मेरा सियासी सफर।
आपने बताया और आज आप मुस्लिम नून के साथ हैं तकरीबन 88 से लेके आप अराउंड 88 98 2008 18 तकरीबन 30 इयर्स आपने पीपल्स पार्टी के साथ रहने के बाद आपने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। अब मेरा आपसे सवाल है कि भुट्टो साहब की अदालती कत्ल होता है उसके बाद नवाज शरीफ साहब पलते हैं जनाब जियाउल हक की गोद में और पैदावार है मार्शल लॉ की और फौज की पैदावार है। उसके बाद आप मुझे ये बताइएगा कि आपने मोहतरमा के साथ आज डिफेंड किया कि उनको पूरा 5 साल 2 टेन्योर में भी पूरे नहीं करने दिए। फिर यानी मोहतरमा आती हैं फिर नवाज शरीफ साहब फौज के जोर पे दोबारा आ जाते हैं फौजी डिसॉल्व करती है ना गवर्नमेंट्स को। आपने ऊपर 4-5 दफा ऐसे देखा कि पीपल्स पार्टी आती थी तो मुस्लिम लीग फौज के कदमों में जाके बैठ जाती थी और फिर उनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाती थी जो भी होता था। आज भी मुल्क में यही हो रहा है। आप نے تو اپنی پارٹی بدل لی. یو میڈ منی ان دا پروسیس. آپ کو گورنمنٹ کے لوگوں کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنخواہیں بھی ملی, مراد بھی ملی, الیکشنز اب کروڑوں میں ہوتے ہیں, آپ نے وہ پیسہ بھی کمایا. مجھے یہ بتائیے گا, عام عوام کے لیے آپ نے کیوں کمپرومائز نہ کیا؟ آپ نے کمپرومائز کیا اپنی پوزیشن کے لیے, عام عوام کے لیے, کہ آج پاکستان کو بنے 76 ایئر ہو گئے, آج بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اپنا 5 سال کا ٹینیور پورا نہیں کر سکتا. اٹس ویری شیم فل فار پاکستان کہ کوئی بھی وزیر اعظم اپنی طبعی عمر پوری نہ کر سکا. تو بجائے اس کے کہ ٹو ٹیک اسٹینڈ فار دا پیپل آف پاکستان, فار دا پاکستان, آپ نے اسٹینڈ لیا اپنی ذاتی حیثیت کے لیے, اپنی ذاتی رنجش کے حوالے سے کہ میں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی, میں مسلم لیگ نون کے ساتھ آ گیا. مگر ملک کا کیا قصور ہے؟ عوام جو آپ جن کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ غیر تعلیم یافتہ عوام ہے جو محسوس نہیں کر رہے کہ ان کے ساتھ کیا غدر ہو رہا ہے؟
یہ اصل میں آپ نے ایک سانس میں سب کچھ کہہ دیا, اور وہ آپ نے مجھے بھی دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ بنا دیا. کیا میں نے اتنا کروڑوں بنائے ہیں, نہ میں بنا سکتا ہوں, مجھے وہ فن ہی نہیں آتا. اور میں نے جب پیپل پارٹی نے چودھری کو ملا بھی لیا, میں پھر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا. میری فیملی چھوڑ گئی, میں 5 سال پھر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ, کیونکہ بلاول کی وجہ سے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کا جو سارا نظریاتی سانس تھا وہ بدلتا گیا, اور میرے جیسے آدمی کے لیے جو سپیس ہے وہاں پہ کم ہوتی گئی. اور میں دوسری آپ کے ایک بات بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کا سرکر ہر کسی کو قبول کر لے گا, گجرات کے چودھری کو قبول نہیں کرے گا. آصف صاحب نے خود بیانیہ بنایا تھا قاتل لی, تو آصف صاحب نے چودھری کو بنایا پنجاب کے اندر, اس شام کو پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. کچھ لوگ پیپلز پارٹی والے نون لیگ کے ساتھ چلے گئے, کچھ لوگ عمران خان کے ساتھ. میں تو پھر 5 سال بعد ساتھ رہ کے, جب میرے لیے وہاں پہ ماحول اور کہنا دشوار ہو گیا, تو میں نے آصف صاحب سے جا کے ریکویسٹ کی کہ جی اب یہاں میرا گزارا مشکل ہے, میرے لیے تو حالات تنگ کر دیے گئے, تو آپ مجھے اجازت دے دیں. لہٰذا ان سے میں کر کر پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مستقبل آپ نے دیکھا نہیں ہوا. اس کے بعد پہلے پیپلز پارٹی آ کے چھوڑ کے دوسرے اثرات کی طرح کوئی پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی شکایت, کوئی یہ بیان کی مفاد میں چھوڑ. اب آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ میں نون لیگ میں کیوں ہوں. میاں نواز شریف گورنمنٹ کالج لاہور میں میرے 1 سال جونیئر تھے, خواجہ آصف 1 سال جونیئر تھا, اسحاق ڈار میرا 1 سال جونیئر تھا, صدیق کاجو 3 سال جونیئر تھا, سعد رفیق اور بہت جونیئر تھا. تو میرا میاں نواز شریف سے 1964 سے کالج کے وعدے سے تعلق, اور جب میں پیپلز پارٹی میں ایم پی اے تھا صوبائی اسمبلی میں تو وزیر اعلیٰ نواز شریف تھے, اور ان کی بھرپور حکومت کی مخالفت کرتا تھا, لیکن انہوں نے ہمیشہ میری عزت کی جائے پرانے رشتے کے حوالے. چنانچہ جب یہ 2018 میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں کہاں جاؤں, تو مجھے کچھ سر لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ پی ٹی آئی میں چلے جائیں, تو میں نے کہا اگر تھوڑا سا میں نوجوان ہوتا تو شاید پیپل پارٹی میں میرے لیے اٹریکشن ہوتی. دوسرا یہ کہ میں اور قسم کا آدمی ہوں, پیپل پی ٹی آئی کا جو ماحول ہے, میں ادھر اجنبی صاحب جنگیت ترین ہوائی جہاز والا, علیم خان ہوائی جہاز والا, ان کے اسٹیج پہ بیٹھنے کی فیس ہوتی تھی, وہ پیپلز پارٹی میں تو ٹکٹ کی فیس بھی نہیں دیا کرتا تھا. تو میں نے ان حضرات سے کہا بھی کہ اگر میں کہیں گا کسی جماعت میں گیا تو میں ادھر جاؤں گا جہاں میں اجنبی نہیں ہوں. اداچے میں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ دیا بدرا برادران اور ان کے جو ساتھی ہیں ان سے میرا ایک ساتھی پرانا تعلق ہے, تو میں اس پارٹی میں جا کے اجنبی نہیں ہوں گا اور میں کھو نہیں جاؤں گا. ہمارے اندر رکھنی ہوتی ہے کیونکہ الیکشن نہیں ہے, ہمارے اپنے ووٹ ہے, ہماری خدمات ہے. گجرات میں نواز شریف فضل علی جو گرینڈ فادر تھے, انہوں نے گجرات میں سیمینار کالج بنایا اور وہ آس پاس کے ضلع اٹک سرگوڈا جاگ وغیرہ ادھر سے بھی اسٹوڈنٹ سیمینار کالج میں, اور ہماری ایک بہت بڑا قبیلہ بھی ہے, تو ہمارا اپنا ووٹ بینک ہے. لیکن سیاسی جماعت کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے, تو اس لیے آپ کو جو سیاسی جماعت کو جوائن کرنا پڑتا ہے.
مجھے آپ کی ایک بات سے میں آپ کی آگے بڑھنا, کیونکہ وہ ٹائم کا دورانیہ بھی ہے, میں تو عام آدمی کو ریپرزینٹ کرتی ہوں, عام پاکستانی کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. آپ نے دوستی کی بنا پہ اور اپنے تعلق کی بنا پہ جو آپ کا سفر 1964 سے مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا, مگر کیا آپ نے یہ محسوس نہیں کیا کہ اس ملک کو ایک ہموار پٹڑی پہ چلنے کے لیے یا ایک سسٹم کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنا رول نہ چلانے کے لیے, یعنی ڈی ریل کرنے کے لیے, عوام کو مس انفارم کرتے ہوئے پیپلز پارٹی نے اپنا رول پلے کیا, مگر مسلم لیگ نون نے بھی اپنا رول رج کے پے کیا تھا. آپ نے اپنی ذاتی بنیاد کے اوپر مسلم لیگ نون کو تو جوائن کر لیا, مگر کیا آپ نے محسوس کیا کہ ان لوگوں نے, آپ تو گجرات میں رہ رہے ہیں, آپ نے اگر پراپرٹی بھی بنائی تو گجرات میں بنائی, ان لوگوں نے پیسہ بنایا مگر یہ سارا پیسہ پاکستان سے ڈرین کر کے باہر لے گئے, بجائے اس کے کہ باہر سے ملک میں لے کے آتے, تو کیا آپ نے یہ محسوس نہیں کیا کہ ان لوگوں نے ملک کے ساتھ ظلم کیا؟
بات سنے جی, یہ جو پہلے یہ بے وزیر پہ اور آصف زرداری پہ الزام آیا, پھر ان کو دوبارہ لایا گیا, پہلے نواز شریف کو نکالا گیا, پھر دوبارہ نواز شریف کو لایا گیا, اور تیسری مرتبہ بھی نواز شریف سعودی عربیہ سے آ کے ہو گئے.
میں یہی آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جب ادارے اتنا انٹرفیئر کر رہے ہیں کہ ملک کو نہیں چلنے دے رہے, تو وائی یو ڈیڈ ناٹ ٹیک اے سٹینڈ؟ کیا بات ہے کہ اتحاد پوزیشن کے لیے تو ہوتا رہا, مگر وائی آپ پولیٹیشن اتحاد نہیں کرتے کہ یہ اداروں کی انٹرفیئرنس بند ہونی چاہیے؟
میرے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ 30 سال کی سجو گئے, آپ اس کو نہیں جانتے. میں نے پیپلز پارٹی میں سیاہ الحق کے خلاف اسٹرگل کیا محترمہ کے ساتھ,
کل کی ہو
میں جو ہے جیل میں گیا, بات سن لیا میری, میں جو ہے جیلوں میں گیا ہوں, میرے جھوٹے مقدمے بنائے گئے, اور 1997 کے इलेक्शन के बाद गुजरात में नाम लगा और ये मेरे मुंह के अंदर गोली लगी हुई है, मेरी तो स्ट्रगल ही अभी है।
यही तो आपसे बोल रही हूँ, आपने स्ट्रगल की।
जी बात सुन लेना जी,
जी
मैंने अपनी से कोशिश की है और आप गुजरात के अंदर एक ही अवाम सियासतदार है जो के रुपए के बगैर सियासत करता है। आज भी लोगों के पास लैंड क्रूजर से 8-8 करोड़ की, मेरे पास लैंड रोवर है 2007 मॉडल की जो 21 लाख के लिए थी। मेरा स्टांस अब हम ही है। और बात सुने ना, आपने भारत को एक या माह में ताकू, मैंने जो अपनी जवानी है मैंने वो दारों के खिलाफ सर्व किया। अब उसके बाद पीपल पार्टी ने अपना मंशूर बदल लिया जो इस मुल्क के सबसे ज्यादा करप्ट लोग हैं।
एग्री एग्री।
चौधरी इसको गोद में बता लिया, हमें टिकट भी नहीं दी। देहरा नवाज शरीफ के साथ 64 का ताल्लुक है, लेकिन मैं 2018 तक उनके खिलाफ रहा हूं।
मगर मैं आपकी मौत की दूं, मगर मैं आज की
मुझे हार्ट अटैक हुए 1996 में, मैंने बाद में कातलामा बलुआ, मेरे पास मेरा ड्राइवर मर गया 1997 में, मेरे ऊपर मैं जिंदा रह गया। तो मैं तो अब 75 ईयर्स ओल्ड मैन हूँ, तो को रखते अब नौजवान है, करते हैं हमारा अपने हलके में रोल है जी। हमने अपनी जवानी में बहुत मार खाई है, हमें जमातों ने भी पीछे रखा। मैं आपको जैसा मैं था साफ गो असेंबली में बोलने वाला, मेरी अपनी पार्टी के अंदर एलिवेशन इसीलिए मेरी आपने मुक्त ली। मैं तो पाकिस्तान की सियासत में एक मुनफरिद आदमी गुजरा और मैं रुपए के बगैर गुजरात के अवाम आज भी अपने आप को एक नवाबजादे के साथ एसोसिएट करते। मेरी अचीवमेंट एमएनओ ना नहीं है, मेरी जो अचीवमेंट वो ये है कि गुजरात का एक गरीब आदमी एक नवाबजादे के बेटे के साथ एसोसिएट करता है।
ठीक है सर, चलिए मैं बिल्कुल, मैं सर आपकी मौत के आप ये मत समझे। देखिए
बात के वो जो ऊपर वाले वो आपको इल्म है, ये आप
मुल्क हामी और नासिर है। अल्लाह मेरे मुल्क हामी और नासिर है।
वो आपके आप तो बाहर बैठी है ना, तो आप ये जो जहां से पूछे बात
है, आप यकीन कीजिएगा माय हार्ट गोज फॉर दिस। मगर सर अब आप आपकी मैंने स्ट्रगल को मैंने महसूस किया आपके अल्फाज में, मैं वाकई उन अल्फाज में महसूस कर रही हूँ। हम बाजू का जज करते हैं बिकॉज ग्रास लुक्स ग्रीन ऑन द अदर साइड, मगर आज जो सूरत हाल है, यानी 2018 में आपको कहा गया जी पीटीआई को ज्वाइन कर लो, मगर आपने अपनी च्वाइस रखी कि अगर मैंने छोड़नी है पीपल्स पार्टी तो मैं ज्वाइन करूंगा मुस्लिम लीग नून को। मगर आज 2023 की जो सूरत हाल है, आप इमेजिन करें कि जो वो ऊपर वाले हैं, कौन लोग हैं वो ऊपर वाले, क्यों उनको एक्सपोज नहीं किया जा रहा कि वो एक छोटा सा बच्चा, उसकी डेथ होती है, उसके बाप को उसके जनाजे में शिरकत करने का मौका नहीं दिया जाता। यानी दिस इज अ ट्रॉमा।
इनको छोड़ रही है बच्चों की लाशों को पुलिस, हमने जो लाशें उठाई है आप सोच भी नहीं सकते। आज ये लाशें बहुत अहम हो गया जो हमने बच्चों की लाशें उठाई है। इमरान खान की सियासत में कुछ ज्यादा इंसानी जिंदगी आ गई है। और मैं आपको बता दूं, आपको इलम है, हर एक को इलम है, आप ये सवाल आसिफ जरदारी से और नवाज शरीफ से और इमरान खान से करें, पाकिस्तान को कौन चला रहा है। मैं तो नहीं चला।
पीडीएम बन गई, वाई ऑल पार्टीज गेट डोंट गेट टुगेदर और ऊपर वालों की छुट्टी क्यों नहीं कराते? ये मतलब इत्तेहाद पोजीशन के लिए पीडीएम बन सकती है, तो ऊपर वालों को उनकी बैरिक्स में भेजने के लिए क्यों नहीं इत्तेहाद हो सकता?
मैं तो लीडरशिप में नहीं हूँ। देखिए इमरान खान के खिलाफ जो अदम-ए-एतमाद किया जनरल बाजवा ने कराया,
करती हूँ। अच्छा सर, मेरा अगला, अब जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी उन्हीं की जुबान बोल रहे हैं, उन्होंने जो बात की कि शफाफ इंतखाबात इमरान खान के बगैर हो सकते हैं, आप मुझे बताइएगा कि जनरल काकड़ इज नॉट इन अ पोजीशन, शफाफ का मतलब है कि इंटरवेंशन ना हो, ठीक है जी आप निकाल देंगे, मगर उसमें भी आप किसी एक पार्टी को, हो सकता है पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर दें, क्योंकि जरदारी साहब इज वेरी गुड इन टेबल टॉक, ही कैन सेल एनीथिंग। तो
हाँ, और चीजों में भी बहुत गुड है वो,
तो मैंने बताया ना, तो अब फिर तो मुस्लिम लीग नून के साथ भी ज्यादती हो जाएगी, तो ऊपर वालों की छुट्टी कौन कराने आएगा?
आसफ जरदारी जो है वो हमारी जो आजकल की सियासत है उसका रस्तू है। मैं एक बात कहूंगा आपसे, पाकिस्तान रियासत नाम की कोई चीज नहीं है, पाकिस्तान 5-6 आदमियों का नाम है यहाँ पे जनाब। तो आपने पाकिस्तान की जो सारी जिम्मेदारी है मुझ पे डाल, तो इसलिए आप जो देखे होती है हकीकतें, रियलिटीज वो किताबों में होती है, और एक होती है जमीनी हकीकतें, ग्राउंड रियलिटीज प्रिवेल। इसलिए मैं हकीकतों का सोचता हूँ, आइडियलिस्ट मैं सोचता रहूं, यहाँ पे जो तोफिया नहीं है। हमारे यहाँ आज तक इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए, अगर फ्री एंड फेयर होते तो एक इलेक्शन सुजात एंड कंपनी नहीं जीत सकते थे, तो इसलिए मैं तो शिकायत नहीं करता, मैं तो सिस्टम में इसलिए हूँ एक आवाज उठाता रहूं, और वो पहले स्ट्रांग थी वो आवाज, अब वो कमजोर हो गई है।
अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे सर, मेरी बात को भी बुरा ना मनाइएगा, मैं तो आम आदमी की आवाज हूँ।
मैं आप आदमी का सोचते हैं तो पाकिस्तान में आ जाए ना, आप तो जमहूरियत में बैठ, ठीक है
सर? नहीं नहीं, आपको मैं एक बात बताऊं, ये मगरिब की भी जमहूरियत नहीं है सर। आप
उधर अदालते हैं, उधर आपको तहफज है, हम तो सड़क में बैठे, हमारा कोई तहफज नहीं
सर। हर मुल्क अपने हालात के मुताबिक, आपको लगता है जमहूरियत है, आज एक वायरल हुआ है, ये जो बर्तानिया और नॉर्थ अमेरिका ह्यूमन राइट्स का राग लापते हैं, आज फ्रांस में एक काला बच्चा उल्टा होके लेटा हुआ है और हर गोरा उस पे आके पेशाब कर रहा है। नाथसीज को ब्लॉक किया जाता है, मगर आज नाथसीज को सपोर्ट किया जा रहा है बिकॉज दे आर सुपरमिस्ट।
हमसे तो बेहतर है वहां पे, वो जो भी है इलेक्शन तो फेयर होती है नहीं, और वहां पे रूल ऑफ लॉ भी है और अदालतें भी आपके हिफाजत भी है। हम जिनमें हालात में रह रहे हैं ना, तलाशम थे समुन्द्र के दरमियान, आप साहिल से हमारा तमाशा देख रही है और हमसे सवाल पूछ रही है कि पाकिस्तान को आपने उठाया क्यों नहीं हुआ? देख जनाब, और बच्चे ये 15 मिनट के इंटरव्यू में नहीं थे।
बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ, भुट्टो साहब को दूर करने के लिए वो 9 सितारे जमा हुए थे, आज भी पीडीएम बन गई, दरमियान में भी कई दफा इत्तेहाद आए, ये सारे के सारे इत्तेहाद वो लोग जो 6 लोग पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं उनको हटाने के लिए ये लोग इत्तेहाद नहीं होता। यू कैन बी अ वॉइस, यू कैन बी माई रिप्रेजेंटेशन।
लोग आना जी, कभी इधर आते हैं और कभी इधर, बंदा आया बताओ मुझे। तो ये सिस्टम हमारा ये है। ये मां सुने को मारा गया, उसका सुराग मिला, सुतों को मारा गया,
सुराग नहीं मिला, बेनजीर को मरवा दिया, कोई सुराग नहीं मिला।
वो हुक्मरान तो नहीं था, उसको छोड़े। बात ये है कि फर्स्ट जो आप है ना, आजकल आज ज्यादा खराब है पहले की नस्बत। पहले मैं आजादी से बोलता था, आजकल एहतसाब करे जनाब, और मैं तो कमजोर आदमियों को बाकी दाद नहीं है, क्योंकि कुर्सी नहीं है, पैसे नहीं है, टिकट लेके लंदन नहीं भाग सकता। मैं तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के उनकी सियासत को अपनी जिंदगी दी। जो हो सकता है वो अल्लाह ने कह दिया, जो कल बोला जो अल्लाह